इशाया 14वां बाब मसीह की सल्तनत।
क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा और इसराइल को दोबारा चुनेगा और उनकी अपनी सरजमीन में उन्हें बसाएगा और परदेसी उनके साथ मिलेगा और याकूब के घर के साथ पैवंद हो जाएगा और कौमें उन्हें लाएंगी और उनके मकान में उन्हें पहुंचाएंगी और इसराइल का घराना खुदावंद की जमीन में उन्हें गुलाम और लौंडियां बनाकर रखेगा और जिन्होंने उन्हें असीर किया था उन्हें वो असीर करेंगे और अपने जाबरों पर हुकूमत करेंगे। और उस रोज खुदावंद तुझे तेरी मेहनत और मुशक्कत से और उस सख्त गुलामी से राहत बख्शेगा जिससे तुम खिदमत करते थे। तब तू शाह बाबल पर ये मसल लाएगा और कहेगा,
शाह बाबल पर नोहा, तस्कीर करने वाला कैसे जाता रहा, गोगा कैसे मौकूफ हुआ, खुदावंद ने शरीरों की लाठी और हाकिमों की छड़ी तोड़ी, जो उम्मतों को गुस्से में पै दर पै जर्ब लगाते थे और कौमों पर गजब से हुकूमत करते और उन पर सख्त जुल्म करते थे। सारी जमीन ने आराम पाया और साकिन हुई और लोगों ने यकायक गीत गाना शुरू किया, सर्व और लुबनान के देवदार तुझ पर खुशी करते हुए कहते हैं कि जब से तू सो गया कोई हमें काटने के लिए ना आया। नीचे से आलमे असफल तेरी आमद के इस्तिकबाल में जुम्बश खाता है और वो तेरी खातिर मुर्दों की रूहों यानी जमीन के तमाम रईसों को उठाता है। वो कौमों के तमाम बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब बोल उठेंगे और कहेंगे कि तू भी हमारी मानिंद आजिज हुआ और हमारी मिसल बन गया। तेरी अजमत और तेरी सारंगियों की आवाज आलमे असफल तक नीचे उतारी गई। कीड़े तेरा फर्श बनेंगे और किर्म तेरा बाला पोश होंगे। ए रोशन सितारे, ए फजर के फरजंद, तू कैसे आसमान से गिर गया। ए कौमों पर जबरदस्ती करने वाले, तू कैसा जमीन तक काटा गया। तू जो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ूंगा, मैं खुदा के सितारों से अपना तख्त ऊंचा करूंगा और मैं शिमाल की इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों की बुलंदियों के ऊपर चढ़ूंगा और मैं हक ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू आलमे असफल में यानी गढ़े की तह में नीचे उतारा गया। जो तुझे देखते हैं वो तुझ पर ताक लगाकर गौर करते हैं कि क्या ये वही आदमी है जिसने जमीन को हिलाया और ममलकतों को जुम्बश दी, जिसने दुनिया को वीराने की तरह कर दिया, उसके शहरों को ढा दिया और जिसने कैदियों को उनके अपने घरों में जाने ना दिया। तमाम कौमों के सब बादशाह हर एक अपने घर में इज्जत के साथ सो गए, लेकिन तू मकरू मुर्दार की मानिंद अपनी कब्र से दूर पड़ा हुआ है। तू पामाल की हुई नाश की तरह उन मकतूलों से ढांपा गया जो तलवार से छेदे गए, यानी उनसे जो घड़े की तह में नीचे उतरे हैं। दफन किए जाने में भी तू उनके साथ ना होगा, क्योंकि तूने अपने मुल्क को बर्बाद किया और अपनी रियाया को कत्ल किया। बद किरदारों की नस्ल का अबद तक कभी जिक्र ना किया जाएगा। उसके फर्जंदों के लिए कत्ल के सामान उनके बाप दादा के गुनाहों के बाइस तैयार करो। वो ना उठेंगे और ना जमीन के वारिस होंगे और ना रुए जमीन को शहरों से भरेंगे, क्योंकि रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं उनके खिलाफ उठूंगा और बाबल से नाम और बकिया और नस्ल और औलाद नाबूद करूंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं उसे खार पुश्तों की मीरास और पानी की झीलें बनाऊंगा और फना के जारूब से उसमें झाड़ दूंगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है।
अशूर की सजा। रब्बुल अफवाज ने कसम खाकर फरमाया है कि जो मैंने सोचा वही होगा और जो मैंने इरादा किया वैसा ही वाकई होगा। मैं अशूर को अपनी सरजमीन में शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पामाल करूंगा। तब उसका जुआ उन पर से हटाया जाएगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतारा जाएगा। ये वो मशवरत है जिसका मैंने तमाम जमीन पर हुक्म दिया, और ये वो हाथ है जो सब कौमों पर बढ़ाया गया है। क्योंकि रब्बुल अफवाज ने यूं कसद किया तो कौन उसे मनसूख करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है तो कौन उसे पीछे को हटाएगा। फिलिस्तीन की सजा। जिस साल में के आहाज बादशाह मर गया उसी में ये बारे नबूवत पाया गया। ऐ कुल फिलिस्तीन, तू खुशी ना कर कि तेरे मारने वाले की छड़ी टूट गई, क्योंकि सांप की जड़ से अफ्फा निकलेगा और उसकी नस्ल उड़ने वाला अजदहा होगा। मेरे पहाड़ पर गरीबों को खाना खिलाया जाएगा और मिस्कीन इत्मीनान से बसेंगे, जबकि मैं तेरी जड़ को काल से मारूंगा और वो तेरा बकिया कत्ल करेगा। ऐ फाटिक वावेला कर, ऐ शहर चिल्ला, ऐ तमाम फिलिस्तीन लर्जा हो, क्योंकि शिमाल से धुआं आएगा और उसकी सफों में कोई अकेला ना होगा। कौमों के कासदों को क्या जवाब दिया जाएगा? ये खुदावंद ने सैहून को तामीर किया और उसके मिस्कीन उसकी पनाह लेंगे।